वो अल्लाह की एसोसिएशन से अलग नहीं हो सकता, वो है ही अल्लाह का। हम कहते हैं मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हम कहते हैं मेरा घर मेरा घर मेरा घर, हम लड़ते हैं खानदान जायदादों के ऊपर, ये मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। हाँ, किसी को किसी का हक, किसी लीगल हेयर का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन समझे दो भाई हैं और दो भाइयों में से एक भाई छोटे भाई का हिस्सा नहीं दे रहा। अब मेरा हिस्सा छोटा भाई करता रहे, या गोइंग बैक ऑन द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसने हक पर होते हुए अपना हिस्सा छोड़ दिया, जिसने हक पर होते हुए अपना झगड़ा खत्म कर दिया, मैं उसको जन्नत के दरमियान में गारंटी देता हूं एक घर की, कौन सा अमल अच्छा है, मेरा हिस्सा या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी? ये गारंटी होना तो यही चाहिए। असल में क्या है, कुरान के सारे उसूल और कवायद, कुरान की तमाम अहकामात की खूबसूरतियां मैं जितनी अडॉप्ट कर सकती हूँ मैं अडॉप्ट कर लूँ। लोगों को हम सिखा नहीं सकते, लोगों के हम हलक में उतार नहीं सकते, हम जबरदस्ती उनको सॉलो नहीं करा सकते, बता सकते हैं, उसके बाद उनका मामला वो जाने और अल्लाह जाने। तो ये मेरा माल मेरा हिस्सा मेरा रिस्क मेरा घर मेरी वार्डरोब मेरा स्टॉक, ये कुछ मेरा मेरा कुछ नहीं होता। इधर आंख बंद होने की देर होती है, मेरे मेरे में से लफ्ज हट गया, विरासत विरासत का हिस्सा विरासत विरासत का हिस्सा, कितनी देर लगती है, एक लम्हा लगता है। इसलिए अल्लाह ने आगे फरमाया वा इलैहि नुशूर, उसी की तरफ तुम्हारा रेजरेक्शन है, उसी की तरफ तुमको दोबारा उठाया जाना है। दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ड नुशूर। नुशूर नशर से है, नशर में दो मफहूम आते हैं, द इमीजिएट जिसको आप लिंग्विस्टिकली बेस मफहूम कहते हैं नशरा का, उसका मतलब होता है किसी चीज का ग्रो करना, किसी चीज का फैलना और फिर बंद हो जाना। अरब मिसाल दिया करते थे नशरा के लिए, स्क्रोल्स होते हैं ना, जैसे कैलेंडर स्क्रोल्स होते हैं, पहले जमाने में कैलेंडर्स आते थे वो रोल होके, साल के शुरू में एक बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, अब तो हमारे बच्चे बिल्कुल ही खत्म इन एक्साइटमेंट्स में से। तो साल के शुरू में दिसंबर के महीने में घर में कैलेंडर्स आते रहते थे, कभी यहां से आ रहा है कभी वहां से आ रहा है कभी यहां से आ रहा है, तो सब बच्चे रोल कर करके एक साथ उसको रखते थे, और जब आप कैलेंडर को बहुत देर तक रोल रखते थे, आप खोलते थे तो दोबारा रोल हो जाता था, ठीक है। तो ये कैलेंडर का रोल क्या हुआ, कैलेंडर का खोलना और उसका तेजी से दोबारा रोल हो जाना, दिस इज नशर, दिस इज नशर। आपने खोला मेहनत करके तो फैल गया, फिर जैसे ही छोड़ा वापस आ गया, दिस इज नशर, दिस इज द बेस मीनिंग ऑफ नशर। एक मफहूम इसके अंदर ये इसका बेस मफहूम लिया गया। जमीन के एंगल से जब नशर आता है तो स्कॉलर्स कहते हैं जमीन में नशर का पार्ट रबी का पार्ट होता है, बाहर का मौसम। जमीन में जो बीज डाला जाता है, जमीन में जो सीडलिंग लगाया जाता है, स्प्रिंग के मौसम में वो ब्लॉसम करता है, वो फैल जाता है। बट वो हमेशा फैला रहता है, हमेशा ब्लॉसम किया रहता है, या विदर्ड कर जाता है, मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। सो दैट्स नशर। जमीन के एंगल से नशर है बाहर का मौसम, बहार आएगी अपने वक्त पर आएगी, और उसके बाद बहार हमेशा नहीं रहेगी, बाहर में चीजें सब्जा फूल हरियाली फैलेगी, उसके बाद सुकड़ जाएगी, ड्राई हो जाएगी, येलो हो जाएगी। ये नशर के अंदर मफहूम आता है। तो अब इन दोनों मफहूम को अगर आप इस आयत के साथ कनेक्ट करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से इंसान को कहा है तुम अपनी जिंदगी में फलो बढ़ो आगे नशुनुमा पाओ। गो हार्नेस द वर्ल्ड, जाओ जमीन को एक्सप्लोर करो। बिल्कुल इसी तरह से इसमें से समझा जा सकता है दुनिया का इल्म हासिल करो, जहां रिवील्ड नॉलेज का इल्म तुम्हारे लिए अहम है, गो फाइंड यूनिवर्सिटी इल्म, स्कूल इल्म, सेक्युलर इल्म। ये सेक्युलर और सेक्रेट का नाम तो हमने लगा दिया, वरना जितना भी इल्म है दुनिया के अंदर वो सब अल्लाह की तरफ से है। सेक्युलर इल्म क्या होता है, जब हमने इल्म के अंदर से रिलीजन और खुदा निकाल दिया, अल्लाह निकाल दिया, अल्लाह के साथ एसोसिएशन निकाल दी, तो वो इल्म सेक्युलर बन गया। यूरोपियन रेनेसांस के बाद दुनिया ने इस सेक्युलर टर्म को एक्सपीरियंस करना शुरू किया था। अल्लाह कह रहा है जाओ इल्म हासिल करो, एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, जितना यूनिवर्सिटी का इल्म हासिल करना चाहते हो करो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, यू हैव टू कम बैक टू मी। जिंदगी के अंदर भी जब दिन भर में कारोबार और नौकरी के लिए निकलो, रिस्क की अर्निंग के लिए निकलो, स्कूल कॉलेजेस के लिए निकलो, इल्म हासिल करने के लिए निकलो, तो फिर घर वापस आकर या उसी टाइमिंग्स के अंदर भी बार बार पांच वक्त रब की तरफ पलटना मत भूलना। पांच वक्त कौन से वाले? नमाज के। दिन भर की एक्टिविटीज हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जॉब, फैक्ट्री, जो कुछ आपकी एक्टिविटीज हैं, लेकिन इन सारी औकात के अंदर अल्लाह की तरफ पलटना, जो नशर का मेन पहलू है, वो नहीं भूलना। अल्लाह तुम्हारी कोशिश भी देखेगा, अल्लाह मुतबारिक है, अल्लाह तुम्हारी कोशिश में बरकत डाल देगा अगर तुम अपने तमाम कोशिश के अंदर बार बार अपने रब की तरफ पलटोगे। अल्लाह तुम्हें बरकत के साथ इस दुनिया की जिंदगी में बहार का एक्सपीरियंस कराएगा, ब्लॉसम का एक्सपीरियंस कराएगा, तरक्की का एक्सपीरियंस कराएगा, लेकिन असल बहार, असल रबी, असल स्प्रिंग कहाँ है? जन्नत में। असल स्प्रिंग वहां। ये तो प्रीव्यू है, ये तो एक हल्का सा ट्रेलर है, ये तो दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की स्प्रिंग, दुनिया के फूल, दुनिया की आबशारें, दुनिया के समुंदर, दुनिया की ग्रीनरी, इट्स जस्ट अ प्रीव्यू। एक बड़ी खूबसूरत दुनिया तो आगे मौजूद है। अगर अपनी जिंदगी में अपने रब को याद रखोगे तो इंशाल्लाह आगे एक बेहतरीन बहार वाली जगह जो है वो मौजूद है। तो एक एंगल मुसलमानों के अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, जिंदगी में आप जो भी काम करें शरीयत के दायरे में हो, अल्लाह आपको पढ़ने से मना नहीं करता, अल्लाह आपको तरक्की करने से मना नहीं करता, अल्लाह साइंसेस का इल्म हासिल करने से मना नहीं करता है, बस अल्लाह ये कहता है इन उलूम के अंदर मुझे ना भूल जाना। क्या आज का इंसान लॉप साइडेड है? या तो इंसान कुरान का इल्म हासिल करता है, मदरसे की तालीम हासिल करता है, मस्जिद के इमाम बनते हैं, या इंसान साइंटिस्ट बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, या बिजनेसमैन बनते हैं। इन दो का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता क्या? एक इंजीनियर मस्जिद का इमाम नहीं हो सकता क्या? एक साइंटिस्ट कुरान को समझने वाला और कुरान को पढ़ने वाला नहीं हो सकता क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का इल्म रखने वाला अल्लाह के कलाम को भी साथ साथ पैरेलल समझने वाला नहीं हो सकता? वी नीड दिस कॉम्बिनेशन राइट नाउ। ऐसे इंसानों की जरूरत है। अपनी बेटियों को भी इल्म दीजिए और अपने बेटों को भी इल्म दीजिए। हर वो इल्म जिसमें इंसानियत की खैर है वो हमारी औलाद के लिए खैर वाला है। सिर्फ दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अब हर इल्म के अंदर जिसको दुनिया का इल्म कहते हैं उसमें से रिलीजन हट गया है, और जब रिलीजन हट गया है तो वो एक तरह से एक आंख वाला इल्म रह गया है, बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस निकल गया। तो जब हम अपने बच्चों को दुनिया के इल्म के साथ अटैच कर रहे हैं तो अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस इल्म के अंदर अल्लाह नहीं है, उस इल्म के अंदर इखलाक नहीं है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस के इल्म, यूनिवर्सिटीज के इल्म, मैं फैक्ट बता रही हूँ, हमारे बच्चों को इंसान नहीं बना रहे, ये हमारे बच्चों को इखलाक नहीं सिखा रहे, यह हमारे बच्चों को तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी चीज नहीं सिखा रहे। नाइदर दे आर क्लेमिंग कि हम आपके बच्चों की तरबियत करते हैं। जाएं जाकर पूछें किसी भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कहते हैं हमने कब कहा कि हमने आपके बच्चे को यहाँ तरबियत करने के लिए बुलाया? कहते हैं हमने तो पढ़ाने के लिए बुलाया, हम तो उसको इल्म दे रहे हैं जो दुनिया की किताबों का इल्म है, तरबियत करना आपका काम है। तो फिर ये माएँ और बाप और ख़ानदान और ये माशरे के वालिदैन, ये धोखा कैसे खा गए कि स्कूल भी तरबियत करता है? वो तरबियत गाहें अलग थीं, वो स्कूल्स और मदरसे अलग थे, जहां उस्ताद दिन रात मेहनत करके पैसे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान को ग्रो करने के लिए, इंसान के किरदार को निखारने के लिए मेहनत किया करते थे। आज के स्कूल ये क्लेम नहीं करते कि हम आपके बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो फिर माएँ और बाप ये कैसे समझते हैं कि हम स्कूल भेजेंगे और बच्चा हमारी रिस्पेक्ट भी सीख लेगा, बच्चा डिसेंट बच्चा भी बन जाएगा, बच्चा अपने सिबलिंग्स के साथ भी बहुत शेयरिंग पर रहेगा, बच्चा अपने घर के बड़ों के साथ भी जो है वो अदब के साथ रहेगा? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल कॉलेजेस में ये नहीं है, हमें वक्त लगाना है। अब जब आपने दिन के 12 घंटे में से 9 घंटे बच्चे के स्कूल को दे दिया तो बाकी तो 3 घंटे बचे, वो इंसान का बच्चा है, रोबोट का बच्चा तो नहीं है, मशीन तो नहीं है ना? हो क्या, हम समझते थे वैसे मशीन ही है, समझते हम मशीन ही हैं। हमने अपने बच्चों को, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात मेंशन की थी, हमने अपने बच्चों को एंजॉय करना छोड़ दिया। जब एंजॉय करना ही छोड़ दिया, जब उनके साथ मुस्कुराना छोड़ दिया, जब उनसे बातें करना छोड़ दें, तो फिर तरबियत के लिए तो बड़ा स्टेमिना और सब्र चाहिए होता है। सब्र से बैठ के हमसे बात कहाँ होती है? माएँ ज्यादा फ्लेयर अप कर जाती हैं इससे पहले कि बच्चा फ्लेयर अप करे। हाँ बच्चे भी फ्लेयर अप करते हैं, लेकिन माएँ भी फ्लेयर अप कर जाती हैं। याद रखें, स्कूल्स के बाद मेजर जिम्मेदारी इखलाक संवारने की हमारी है। ना स्कूल के उस्ताद उनके अखलाक संवार रहे हैं, ना स्कूल के उस्ताद उनको इंसान बना रहे हैं, स्कूल के उस्ताद उनको मनी मेकिंग मशीन बना रहे हैं। अगर आपने और मैंने उनको इंसान बनाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाए, एम्पथी और सिंपथी नहीं सिखाया, माफ करना नहीं सिखाया, किसी दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना नहीं सिखाया, तो ये बच्चे कल को घर कैसे संभालेंगे? और कैसे घर टूट रहे हैं, कितनी आसानी से घरों में रिश्ते खत्म हो रहे हैं, कितनी आसानी से डाइवोर्स रेट और सेपरेशन रेट और खुला रेट बढ़ता जा रहा है, यह हमारी काहली की, यह हमारी सुस्ती की, यह हमारी सब की सब गलत तरबियत की जिंदा तस्वीर है। तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी हम जिंदा हैं, अभी भी हम अपने कानों से सुन सकते हैं, अपने पैरों पर चल सकते हैं, अभी भी अल्लाह ने हमें जिंदगी की मोहलत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मलकुल मौत नजर तो नहीं आ रहा ना? नहीं, आप फिर खामोश है। मलकुल मौत नजर तो नहीं आ रहा ना? क्या ये नहीं नजर आ रहा? आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक नजर ना आए, जिंदगी में हर खैर की मोहलत मौजूद है, हर खैर की मोहलत मौजूद है। तो अपने बच्चों को ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन दें। तो पहली चीज यही है, अपने बच्चों को जो इल्म सिखाएं, उनके दिल में खुदा खौफी डालें, खशियत डालें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डालें। रसूल उनके लिए इमोशनल लेवल पर कोई हस्ती हो, इमोशनल लेवल पर अल्लाह के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, अल्लाह की बात सुनकर कुछ थोड़ा सा सुनने का दिल करे, अल्लाह के कलाम की आवाज कान पे पड़े तो कुछ हिल जाए दिल के अंदर, ये माँ कर सकती है, ये माँ दिल में मोहब्बत डाल सकती है। पहला एंगल यही याद रखें, हम दुनिया में जितने भी इंसान हैं, खासतौर पर हम मुसलमान, हमारी दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारा बार बार रब की तरफ पलटना हमें याद रहे, अल्लाह ने हमें इजाजत दी है। दूसरी चीज, जब अल्लाह जिंदगी में रिस्क दे, इल्म का रिस्क हो, सेहत का रिस्क हो, कारोबार का रिस्क हो, शोहरत का रिस्क हो, नेमतों का रिस्क हो, औलाद की फरमाबरदारी का रिस्क हो, या कोई भी नेमत हो जो रिस्क की शक्ल में है, उसको हमेशा अल्लाह से एसोसिएट कीजिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, मैं हूं ही इतनी अच्छी, मैंने तरबियत इतनी अच्छी की है, क्या करूं अब मैं हूं ही इतनी अच्छी, जब तो मेरे हस्बैंड हर वक्त मेरी तारीफ करते रहते, मैं पकाती इतना अच्छा हूं, तो जाहिर बात है आपने तारीफ तो करनी थी। ये नहीं हो, जब आपकी तारीफ हो, जब आपके बच्चों की तारीफ हो, जब आपके घर की तारीफ हो, जब आपके शोहर की और आपके रिलेशनशिप की तारीफ हो, वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, हमें जो नेमतें मिली हैं वो उस रब की अता है, उसी की तौफीक है तो हम यहां बैठे हैं, उसी की तौफीक है तो हम कुरान सुनते हैं, उसी की तौफीक है तो अच्छी बात जुबान से निकलती है, वरना हम में कोई ताकत नहीं है। हमारी जिंदगी के बहुत से आमाल हमारी नाफरमानियों का मुंह बोलता सबूत होते हैं। अगर अल्लाह हमें उन नाफरमानियों के बावजूद अपनी रहमत के जरिए अपने कलाम से जोड़ देता है, तो ये उसकी तौफीक है, उसकी अता है, उसकी ब्लेसिंग है। तो हमेशा हर खैर को अल्लाह से जोड़ें और अपनी जिंदगी में हर नेमत को, हर नेमत को, यस इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, अपनी जिंदगी की हर नेमत को अल्लाह से अटैच कर दें। कुरान में आता है, तुम मालतुस अलुन्ना याउमा इदिन अनिन नाइम, उस दिन तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। हजरत अली रदी अल्लाह अन ने इस आयत के ऊपर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कितनी बड़ी नेमत होगी तो सवाल होगा। आप सोचे, यही हकीकत है, आप नेमतें सोचने बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि वाकई मतलब देयर इज नो लिमिट, नेमतें कितनी हैं। तो हज़रत अली के जहन में भी सवाल आया कि कितनी बड़ी नेमत होगी तो सवाल होगा या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, शरबत मा इन बारिद फी यौमिल हार, गर्म दिन में, गर्मी के दिन में, सख्त गर्मी के दिन में एक ठंडा पानी का घूंट, घूंट भी नहीं है, शरबत मा इन बारिद, एक सिप, जो स्ट्रॉ से एक सिप हल्का सा मुंह में आता है जिसके बाद दिल चाहता है गट 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 करके पानी पी जाओ, गर्मी के दिन में एक ठंडे पानी का सिप, इसका भी जवाब देना होगा। और हम कितनी नेमतें हैं और कैसे जवाब देंगे? तो सीधी सी बात है, हम अल्लाह की कदर कर नहीं सकते जो उसकी कदर का हक है, हम उसका शुक्र अदा कर नहीं सकते जैसा कि उसका शुक्र अदा किया जाना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि हम अपनी जिंदगी की हर नेमत को उसके साथ जोड़ दें, उसकी नाफरमानी ना करें, उसके कर्म और उसके लुत्फ को महसूस करने वाले बने, जहां पांव फिसले सॉरी बोल दें, और अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले बेहतरीन गनीमत जाने, अपनी आज की फरागत को, फुर्सत को अपनी मसरूफियत से पहले बेहतरीन जाने, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, अपनी सेहत को बीमारी से पहले बेस्ट यूटिलाइज कर लें, और अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अपनी मौत के लम्हे से पहले बेहतरीन यूटिलाइज कर लीजिए। इस जगह पर आयत नंबर 15 पर सूरह मुल्क का दूसरा पैसेज जो कि मेजर पैसेज था वो कंप्लीट हो गया। इब्ने आशूर और इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस पैसेज के एंड के ऊपर कुछ कंपैरिजंस किए हैं, और वो कंपैरिजन में पहला कंपैरिजन ये करते हैं, वो कहते हैं कि आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने आसमान का जिक्र किया था, वलाकद ज़य्यन्ना समा अद्दुनिया बिमसाबी, कि अल्लाह ने आसमान को डेकोरेट किया है, इंसानों को दिखाया था कि देखो सर के ऊपर आसमान देखो, ऐसे नहीं पिच डार्क आसमान बना दिया, ऐसे नहीं रेड कलर का आसमान बना दिया जिसको देख के तुम्हें नौजिया होने लग जाए। सोचें सर के ऊपर आसमान ऑरेंज कलर का होता, रेड डार्क रेड कलर का होता, तो सूदिंग इफेक्ट तो नहीं आता इसका। तो इंसानों को सर उठाकर देखने को डेकोरेशन कही आयत नंबर 5 में, और आयत नंबर 15 में अल्लाह ने जमीन की क्वालिटी बताई इंसान के रेफरेंस से, हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा ज़लूलन, देखो अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए टेम किया है, आसमान तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचाता है, जमीन तुम्हें रिस्क प्रोवाइड करती है। ये एक कंपैरिजन है। दूसरा कंपैरिजन वो लिखते हैं, हमने बात की थी ना कि हर मखलूक में दो फंक्शंस हैं, स्टाइल और सब्सटेंस, तो वो कहते हैं कि आसमान को देखो, आसमान में खूबसूरती है, स्टाइल है, ब्यूटिफिकेशन है, और जमीन को देखो तो जमीन में सब्सटेंस है, मकसद है। जब तक इस जमीन के ऊपर हो, इससे पहले कि जमीन के अंदर चले जाओ, जब तक ये जमीन के ऊपर हो अपने वक्त का बेहतरीन यूटिलाइजेशन कर लो। दिस इज सेकंड कंपैरिजन। थर्ड कंपैरिजन वो कहते हैं आसमान वुसअतों में बहुत बड़ा है, तो अल्लाह ताला ने जिस मखलूक को फ्रीली आसमान पर मूव करने की इजाजत दी है वो शयातीन और जिन है, और उनको कह दिया कि तुम मूव कर सकते हो आसमानों पर, बट देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, मत जाना वहां पर। इसके कंपैरिजन में इंसानों के लिए जमीन बनाई, और इंसानों को जमीन के लिए क्या कहा, क्या कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है? फम शू फी मना की बिहा, सरफेस पर तो चलो ही चलो, गो डिग दिस अर्थ डीपली, जहां तक एक्सप्लोर करना चाहते हो, हार्नेस करने के लिए अल्लाह ने इसको सबड्यूट कर दिया है। और आखिरी इसके अंदर कंपेरिजन जो स्कॉलर्स बताते हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया का रिस्क जन्नत के प्रीव्यू के तौर पर दिया है, और जो शैतानों को कहा था कि जब शैतान रिस्ट्रिक्टेड इलाके में जाते हैं तो उनको रजम किया जाता है, वो अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नुम का ग्लिम्स दिखाया है। तो आपको इस तरह के कंपैरिजन क्लासिकल स्कॉलर्स की तफसीर में बहुत ज्यादा मिलता है। आगे सूरह मुल्क का तीसरा हिस्सा शुरू हो रहा है जो आयत नंबर 16 से शुरू होगा और आयत नंबर 22 तक जाएगा। सूरह मुल्क का जो ये हिस्सा है इसमें आपको कॉम्बिनेशन ये मिलेगा कि अल्लाह ताला दो सवाल पूछेंगे तमाम इंसानों से, और खासतौर पे क्योंकि डोमिनेंट ऑडियंस कुरैश थे, डोमिनेंट ऑडियंस नाफरमान इंसान हैं जो कि अल्लाह की नाफरमानी में अल्लाह की नेमतों को भूले हुए हैं। सूरह मुल्क के डोमिनेंट ऑडियंस नाफरमान लोग हैं, ताकि अल्लाह ताला उनको जगाए और उनके जरिए मोमिनीन को भी नसीहत कर दे। तो आपको इस हिस्से में आयत नंबर 16 से 22 तक का जो हिस्सा है इसमें आपको पहले दो आयात में समझें 16, 17 और 18 में दो रिटोरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, अल्लाह सवाल पूछेगा, और उसके बाद फिर आगे आयत आएगी उसके अंदर अल्लाह ताला एक स्पिरिचुअल रियलिटी बताएंगे, फिर दो सवाल पूछे जाएंगे, फिर एक स्पिरिचुअल रियलिटी आएगी। तो इस तरह से ये पूरा 16 से लेकर 22 तक का एक पोर्शन बनता है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर कुरैश को मेनली एड्रेस किया है, वो कुरैश जो अपने आप को अनटचेबल समझते थे, आपको बताया था कि उनको लगता था कि वो अरब के सबसे अहम लोग हैं इसलिए कि उन काबा के कस्टोडियन थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी ईगो को क्रश किया है, भूल जाओ पुरानी बातें जो अब तक सूरह मुल्क में आई, जहन्नुम, कयामत, जमीन का शटर्ड होना, ये सब भूल जाओ। अल्लाह चाहे तो अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में किसी न किसी आफत का शिकार कर सकता है। आयत नंबर 16 में आया आमिन तुम मन फिस समाई, क्या तुम बेखौफ हो गए हो उससे जो आसमानों में है, अन यक्सिफा बिकुमुल अर्द, कि वो तुम्हारे साथ, बिकुम के साथ आया है, कि वो तुम्हारे साथ जमीन को धंसा दे, फ़ाइदा हिया तमूर, तो वो रैटल करती रहे, या इसका तर्जुमा किया जाता है या वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। क्या तुम उससे बेखौफ हो जो तुम्हें जमीन, जो तुम्हारे साथ जमीन को धंसा दे और फिर उसके बाद तुम देखो कि जमीन जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। तो कुरैश को बताया गया कि क़यामत से पहले भी अल्लाह की सजा का इम्पैक्ट इस दुनिया में आ सकता है। और ये जवाब, ये सवाल, या ये आपको जो एसेंस मिल रहा है, ये हर नाफरमान इंसान के लिए है। मुकाफात अमल हमने सुना है ना, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज बुराई करेंगे कल बुरा होगा। कुरान ये दोनों वार्निंग्स देता है, अहदीस ये दोनों वार्निंग्स देते हैं। एक वार्निंग आती है जब इंसान अल्लाह के साथ मेस करता है, जब इंसान अल्लाह के बंदों का हक मारता है, जब इंसान अल्लाह के मैसेज को वैल्यू नहीं करता, तो दुनिया में भी उसके लिए मुश्किल आ सकती है। ये कुरान और हदीस की क्लियर वार्निंग है। जरूरी नहीं होता सजा सिर्फ आखिरत में मिले, बाज़ोकात गुनाहों की सजाएं दुनिया में मिलने लग जाती हैं। एक वार्निंग ये है, जब इंसान अल्लाह के मैसेज को वैल्यू नहीं करता है तो अल्लाह की सजा दुनिया में आती है। और फिर दूसरी वार्निंग जो आपको कुरान और अहदीस में मिलती है वो ये है कि फिर अल्टीमेटली जहन्नुम की वार्निंग या कब्र की वार्निंग तो तैयार ही है। तो कुरैश को मेंशन किया गया और कुरैश के जरिए बाकी तमाम इंसानों को झंझोड़ा गया है कि तुम देख लो दुनिया की सजाएं भी आई और तुम्हारे ही अपने हिस्ट्री के अंदर कौम सौले और कौम आद मौजूद है। इन दोनों के ऊपर दुनिया में सजा आई अल्लाह के रसूल की नाफरमानी के ऊपर, आखिरत में जो सजा इनकी है वो तुम्हारी आंखों से ओझल है। लेकिन जब जब कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी सजा दी। आमिन तुम मन फिस समाई, देखिए मन आया है, आपको एक कुरान की खूबसूरती नजर आएगी। और आप जब आप तिलावत किया करें तो इन चीजों को ऑब्जर्व किया करें। हम मुस्तकिल यही बात कर रहे हैं ना कि सूरह मुल्क सोचने पर मजबूर करती है। जब तिलावत किया करें तो सोच समझ कर तिलावत किया करें, पारा खत्म करने की जल्दी में नहीं तिलावत किया करें। आप देखें जहां जहां कुरान में सजा देने की बात आती है वहां वहां डायरेक्ट अल्लाह का नाम नहीं आता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कुरान। और सूरह काहफ में आपको यह खूबसूरती बहुत बेहतरीन नजर आती है। हजरत खिदर ने जहां कश्ती को ऐबदार करने की बात की थी वहां उन्होंने कॉन्जुगेशन इस्तेमाल किया था कि मैंने इसको ऐबदार कर दिया, हालांकि किया किसके कहने पे था। लेकिन गलती को, किसी भी कमी को अल्लाह के साथ एस्क्राइब नहीं किया गया। ये शान है अल्लाह की। यहां पर भी आमिन तुम मन फिस समाई, जमहूर उलमा जमहूर मुफस्सिरून का ख्याल है ये मन अल्लाह मुराद है इससे। क्या तुम उससे बेखौफ हो, क्या उस अल्लाह से बेखौफ हो जो आसमानों में है। जमहूर मुफस्सिरून कहते हैं मन अल्लाह के लिए है। बहुत कम फ्रैक्शन है मुफस्सिरून का जो कहते हैं ये मन उन फरिश्तों के लिए आया है जो अल्लाह इस्तेमाल करता है, जिनको या जिनको अल्लाह ने अपॉइंट किया हुआ है जमीन के लोगों को सजा देने के लिए। दोनों राय हैं, बट द स्ट्रांगेस्ट ओपिनियन मन फिस समाई अल्लाह के लिए आया है। लेकिन आप देखें ना यहां रहमान आया जो पीछे आ चुका है, ना यहां पर रब आया जो पीछे आ चुका है। तो ये अल्लाह के कलाम में आपको एक खूबसूरती नजर आती है जब आप थोड़ा सा डिग करते हैं इसके अंदर, वक्त लगाते हैं, तफक्कुर के साथ इसको पढ़ते हैं। बाकी अल्लाह ताला ने, अगर यहाँ मुराद अल्लाह ही है तो अल्लाह ने अपना नाम मेंशन क्यों नहीं किया। सूरह मुल्क है जिसकी पहली आयत ही बियादिहिल मुल्क से शुरू हुई है, तो अल्लाह का डोमिनियन, अल्लाह की सल्तनत ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो अब यहाँ जरूरत नहीं थी अल्लाह का नाम लेने की। अल्लाह ने सिंपली कहा क्या तुम उससे बेखौफ हो जो आसमानों में है, अन यखसिफा बिकुमुल अर्द, के जमीन के साथ ही वो तुम्हें धसा दे। ये खासिफा जो आता है, खासिफा को आज का इंसान बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। खासिफा इज एक्चुअली अ सिंक होल। खासिफा में ऐसा नहीं होता कि जलजला आया और इंसान जमीन के अंदर चला गया। खासिफा, जिस जमीन के हिस्से पर इंसान था वो पूरा हिस्सा जमीन के अंदर चला गया। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ अ सिंक होल। जिस डोमिन, जो तुम्हारी डोमिनियन थी जमीन के, जिस टुकड़े पर तुम्हारा घर था, तुम्हारा शहर था, तुम्हारे घर वाले थे, तुम्हारी नेमतें थी, तुम्हारा महल था, तुम्हारी नाफरमानी और डिफाइंस की वजह से अल्लाह चाहे तो तुम्हारे महल समेत तुमको जमीन में धसा दे, सिंक होल बने और तुम्हारी पूरी डोमिनियन उसके अंदर चली जाए। ये मीनिंग इसके अंदर आते हैं। फाइदा हिया तमूर, तो उसके बाद वो रैटल करने लग जाए। तमूर के दो मीनिंग्स हैं जो मैंने अभी तर्जुमे में भी किए थे। तमूर एक मारा यमूरू से एक मीनिंग आते हैं इसका, टू वेव, रैटल करना, यानी जमीन का तुम्हें अपने अंदर लेने के बाद रैटल करना, जैसे इंसान को शेक किया जाएगा, अल्लाह ताला महफूज रखे। और तमूर का एक मीनिंग आता है खसीफा के बाद जमीन का दोबारा से बंद हो जाना, इतना फ्लैट हो जाना कि किसी को पता भी ना चले कि कोई अंदर इसके धंस गया है। एक मीनिंग इसके ये किए जाते हैं। सो दीज आर कॉन्ट्रारी मीनिंग्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कॉन्टेक्स्ट से इसको समझ रहे हैं। एक है रैटलिंग तमूर के अंदर, मारा या मूरू में, और एक मफहूम आता है खसीफा से कनेक्ट करके जो ज्यादा स्ट्रांग है इस आयत के अंदर, इसलिए के पीछे खसीफा का लफ्ज आया है कि जब आप जमीन में कोई सिंक होल बने, कोई इंसान, किसी का घर, कोई शहर, कोई कौम, कोई इलाका पूरा जमीन के अंदर धंस जाए, उसके बाद अल्लाह ताला जमीन को दोबारा ऐसे मिलाकर स्मूथ सरफेस प्लेन कर दे जैसे यहां कुछ था ही नहीं। और हम जानते हैं इलाकों के इलाके इस तरह से तबाह हुए हैं, सिविलाइजेशंस की सिविलाइजेशंस इस तरह से खत्म हुई हैं। कौम लूत को अल्लाह ताला ने पूरा उल्टा कर दिया, बिल्कुल जैसे आपके जहन में उन अल्फाज को पढ़ के आइडिया आता है कि फ्राइंग पैन में ऑमलेट को उठाकर उल्टा कर दिया जाए। लिटरली अल्लाह ने उस इलाके को पूरा साफिलाहा, उसका पूरा निचला जो था वो आ लिया, वो ऊपर आ गया, और जो निचला था वो ऊपर चला गया। पूरा इलाका अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उठाया गया सरफेस समेत और उसको आसमान तक ले जाया गया। इवन के आसमान की मखलूकात ने इंसानों की चीखें सुने और फिर उसको वेलोसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ उसको पटख दिया गया जमीन के ऊपर और उसको उल्टा कर दिया गया। जब भी वहां डेड सी मौजूद है, देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस इन इट, बहुत सी हिकमतें उसके अंदर छुपी हुई हैं। तो ये सिंक होल के साथ, खसीफा के साथ तमूर का कॉम्बिनेशन बनता है कि अल्लाह जमीन में धसा दे इंसानों को, कौमों को, सिविलाइजेशंस को, शहरों को। अल्लाह के लिए नंबर कोई वैल्यू नहीं रखता। नाफरमान पूरी दुनिया में फैल भी जाएं तो अल्लाह को उन सब नाफरमानों को सजा देते हुए किसी किस्म का एक सेकंड का भी कोई शायबा नहीं आएगा, इसलिए कि उन्होंने रहमान रब के होते हुए भी उसके रहमत के ब्रैकेट में आने की कोशिश नहीं की। जिनको सजा मिलेगी वो अल्लाह के गुस्से की वजह से नहीं मिलेगी, अल्लाह के अदल की वजह से मिलेगी। इसीलिए जिसका जितना गुना उसकी उतनी सजा। अल्लाह बढ़ चढ़कर सजा नहीं देगा, सजा उतनी मिलेगी जितना गुना था। हाँ, रिवॉर्ड बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा, कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने यहां पर एक तस्वीर खींच दी है। आज भी जियोग्राफिकली दुनिया नहीं जानती कि कितनी सिविलाइजेशंस, कितनी जमीन के लेयर्स के नीचे दबी हुई हैं। आज भी जो है वो जब खुदाइयां होती हैं और आर्कियोलॉजिस्ट शहरों के शहर जो हैं वो डिस्कवर करते हैं, तब उनको पता चलता है कि यहां भी जमीन की लेयर्स के नीचे शहर हैं। कैसे चले गए जमीन की लेयर्स के नीचे? यक्सिफ अबिकुमुल अर्ध, पता नहीं कितनी नेशंस को, कितनी कौमों को, कितने इलाकों को अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जमीन में धसा दिया गया। कलीलम मा तशकुरून, दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, जब से इंसानियत बनी है बहुत कम है जो शुक्र गुजार रहे, ज्यादा तो नाफरमान रहे। और अल्लाह ताला ने यहां वार्निंग का ये एंगल बताया है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ क्यामत तक तुम्हें सजा का इंतजार करना पड़ेगा? सजा तो किसी वक्त भी आ सकती है। जिस जमीन पर रहते हो अल्लाह उसी जमीन को खोल दे और तुम उसके अंदर जाकर धंस जाओ, फिर कोई तुम्हें जानने वाला नहीं होगा। कब्र क्या होती है? ये कब्र भी तो सिंक खोली है, डाल आते हैं ना सब, हमें भी डाल आएंगे एक दिन। ऊपर से कब्र फ्लैट, फिर अंदर किसके साथ क्या हो रहा है किसी को मालूम होता है? कुछ मालूम नहीं होता। तो कयामत तो बाद में आएगी, रोजे महशर तो बाद में सेटल किया जाएगा, जहन्नुम वाले जहन्नुम में तो बाद में डाले जाएंगे। ये कब्र की तस्वीर हमें हर वक्त बताती है, जिस वक्त कब्र में डाल दिया जाएगा अंदर क्या होगा बाहर वालों को कुछ मालूम नहीं। कितने कब्रों में मदफून है, ऊपर से जमीन फ्लैट है, उनके साथ अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं। तो अल्लाह से बेखौफ ना हो जाओ, अल्लाह की खशियत इख्तियार करो। अगला सवाल आयत नंबर 17 में, अगेन अ रिटोरिकल क्वेश्चन, अम अमिन तुम मन फिस समाई,